आज का प्रातः क्लास है 24 जून 1968।
टुडेज मॉर्निंग क्लास इज डेटेड 24 जून 1968।
ज्ञान की भी यात्रा है,
देयर इज अ जर्नी ऑफ नॉलेज,
और याद की भी यात्रा है,
एंड देयर इज ऑल्सो अ जर्नी ऑफ रिमेम्बरेंस।
ज्ञान की यात्रा कब पूरी होती है?
When does the journey of knowledge finish?
और याद की यात्रा कब पूरी होती है?
And when does the journey of remembrance finish?
ज्ञान की यात्रा तब पूरी होती है जब हमारी आत्मा के अनेक जन्मों के पार्ट खुल जावे।
The journey of knowledge ends when the parts of many births of our soul are revealed.
हम आत्मा पार्टधारी हैं ना?
We souls are actors, aren't we?
तो रंगमंच पर, स्टेज पर पार्ट बजाने वाला पार्टधारी अपने पार्ट को भूल जाए।
So, if an actor who plays his part on the stage forgets his part,
बेवकूफ कहेंगे।
He will be called a fool.
ज्ञानी तो नहीं कहेंगे।
He will certainly not be called knowledgeable.
ज्ञानी माने जानकार।
Knowledgeable means informed.
जाननहार तब कहें जब अच्छे से अपना पार्ट याद करके प्ले करे।
He will be called जाननहार, meaning the one who knows when he remembers his part well and plays it.
और हम आत्मा हैं।
And we are souls.
आत्मा अनेक जन्म लेती है, अनेक चोले बदलती है।
A soul has many births. It changes costumes many times.
जैसे रंगमंच पर चोले बदले जाते हैं।
Just as they change their costume on a stage.
कपड़े बदलते हैं ना?
They change their clothes, don't they?
ऐसे ही हम आत्मा 84 जन्मों में 84 चोले बदलते हैं और पार्ट बजाते हैं।
Similarly, we souls have 84 different costumes in 84 births and play our parts.
कब कहां पार्ट बजाते रहते हैं।
We keep playing our parts sometimes at some place and sometimes at other places.
तो पार्ट की स्मृति हम आत्मा में आनी चाहिए ना?
So, we souls should remember our part, shouldn't we?
तो कहेंगे ज्ञान पूरा हुआ।
Then it will be said that the knowledge is complete.
यात्रा पूरी हुई।
The journey has ended.
ऐसे याद की भी यात्रा है।
Similar is the case of the journey of remembrance.
जब 63 जन्मों के सारे पाप कर्म दग्ध हो जाएंगे।
When all the sinful actions of the 63 births are burnt.
भस्म हो जाएंगे याद की यात्रा से।
When they are burnt into ashes through the journey of remembrance.
तो हमको याद करने में तकलीफ होगी फिर।
Then will we face any difficulty in remembering?
आत्मिक स्थिति में स्थित होने में कोई तकलीफ होगी ना?
Will there be any problem in becoming constant in the soul conscious stage?
नहीं होगी।
No.
क्यों?
Why?
अभी तकलीफ इसलिए होती है कि 63 जन्मों का जो हिसाब किताब जुड़ा हुआ है वो रील में घूम रहा है।
Now we face difficulties because the reel of the karmic accounts of the 63 births is revolving.
क्या याद की यात्रा से वो हिसाब किताब पूरा हो?
Whether those karmic accounts are cleared through the journey of remembrance?
चाहे बीमारी आदि कर्म भोग से वो हिसाब किताब पूरा हो और चाहे धर्मराज की सजाओं से वो हिसाब किताब पूरा हो।
और थ्रू कार्मिक सफरिंग्स like diseases etc. or through the punishments of Dharmaraj, the chief justice.
हिसाब किताब पूरा हुआ 63 जन्मों का तो आत्मा अपनी जगह स्थिर हो जाएगी।
As soon as the karmic accounts of the 63 births are cleared, the soul will become constant in its place.
स्मृति पक्की हो जाएगी। ये है याद की यात्रा पूरी हुई।
the awareness of the soul will become firm. That will mean the completion of the journey of remembrance.
तब हम अपने को कहाँ महसूस करेंगे?
Then where will we experience ourselves to be?
आत्म की स्थिति में रहने वाला इस पांच तत्वों की दुनिया से परे अपने को महसूस करेगा.
Someone who remains constant in the soul conscious stage will experience himself to be beyond this world of the five elements.
मूल वतन में महसूस करेगा.
He will experience being in the soul world.
सदैव अव्यक्त स्टेज बनी रहेगी.
His अव्यक्त stage, meaning subtle stage, will remain constant.
और ज्ञान की यात्रा?
And what about the journey of knowledge?
वो है वैकुंठ वतन की यात्रा.
That is a journey to the abode of heaven.
मनन चिंतन मंथन बुद्धि में चलता है नई दुनिया का.
When the thinking and journeying about the new world takes place in the intellect,
तो ज्ञान की यात्रा कहेंगे याद की यात्रा कहेंगे?
Then will it be called the journey of knowledge or the journey of remembrance?
क्या कहेंगे?
What will it be called?
ज्ञान की यात्रा कहेंगे?
It will be called the journey of knowledge.
तो गोया तुम दोनों यात्राओं पर हो.
So it is as if you are on both the journeys.
अब ये तो बच्चे जानते हैं हमको पढ़ाने वाला ईश्वर है.
Well, the children know that the one who teaches us is God, ईश्वर.
क्या?
What?
साधारण शासन करता पढ़ाने वाला नहीं है.
Our teacher is not an ordinary ruler.
ईश्वर.
ईश्वर.
ईश माने शासन करने वाला.
ईश मीन्स रूलर.
वर माने श्रेष्ठ.
वर मीन्स हाईएस्ट.
दुनिया में जितने भी शासन करने वाले शासनकर्ता हुए हैं, उन सब में श्रेष्ठ शासन करता है.
Among all the rulers who have ruled, he is the highest ruler in the world.
हिस्ट्री में जो शासन करता हुए हैं, वो तो बहुत कड़े होते थे.
The rulers mentioned in history used to be very strict.
सूली पर भी चढ़ा देते थे.
They used to even hang people.
कोई बात न माने? फांसी की सजा? या देश निकाला? या कुछ भी करते?
If someone did not obey them, they used to give the punishment of being hanged to death or banishment or anything else.
और यहाँ ईश्वर कैसा शासन करता है?
And how does God rule here?
70 साल से ऊपर हो गए.
More than 70 years have passed.
वही बातें बार बार बोलते हैं.
He speaks the same thing again and again.
Direction देते हैं बच्चे ऐसा करो ऐसा करो.
He gives directions. Children, do this, do that.
और बच्चे भूल जाते हैं.
And the children forget.
तो भी बाप दंड देते हैं क्या तुरंत?
Even so, does the father punish them immediately?
नहीं, प्यार से बैठ पढ़ाते हैं.
No, he sits and teaches them affectionately.
तो हमको पढ़ाने वाला श्रेष्ठ से श्रेष्ठ शासन करता है.
So, our teacher is the highest ruler.
उसको ईश्वर कहा जाता है.
He is called God.
उस ईश्वर की तुमको अभी मत मिलती है.
Now you receive the directions of that ईश्वर.
2000 वर्ष की हिस्ट्री में.
In the history of 2500 years.
राजाएं अपनी डायरेक्शन निकालते थे.
The kings used to give their directions.
अपनी अपनी मत देते थे.
They used to give their own opinions.
जैसा जैसा जो राजा आया वैसी उसने अपनी भाषा चलाई थी.
Whatever kind of king came on the throne, he started a language of his own.
प्रजा को वो भाषा बोलनी पड़े.
The subjects had to speak that language.
तो अभी तुमको ईश्वरीय मत मिलती है.
So now you receive the directions of God.
श्रेष्ठ से श्रेष्ठ मत है.
They are the highest directions.
बाद में अर्थात पीछे तुमको मिलेगी कौन सी मत?
Later on, which directions will you receive?
अरे इसी संगम युग में पीछे के हिस्से में कौन सी मत मिलेगी?
अरे in this very confluence age, in the later part of it, which directions will you receive?
अरे ईश्वर संग 36 तक भी रहेगा क्या?
अरे, will God remain here even till the year 2036? Someone said, divine directions.
दैव ही मत मिलेगी.
You will receive divine directions, meaning from deities.
ईश्वर तो तब तक इस सृष्टि पर है.
God is present in this world until.
जिसको हम ईश्वर कहते हैं, वो तो शिव है ना, जन्म मरण के चक्र से नहीं आया.
The one whom we call God is Shiv, isn't he? He is beyond the cycle of birth and death.
उसकी मत तब तक है, जब तक ये उसकी पढ़ाई पढ़ने वाला पहला पैर तैयार नहीं होता है.
He is giving directions until the first pair which studies his knowledge becomes ready.
वो आता ही है नरसिंह नारायण नारी से लक्ष्मी प्रवृत्ति मार्ग स्थापन करने के लिए.
He comes only to transform a man to Narayan and a woman to Lakshmi to establish the household path.
तो पहली जोड़ी तैयार हुई और उसका काम पूरा हुआ.
So, as soon as the first pair is ready, his task will be finished.
फिर ईश्वर की मत नहीं मिलेगी.
Then you will not receive God's directions.
फिर किसकी मत मिलेगी?
Then whose directions will you receive?
दैवी मत है. ऊंचते ऊंचे जो देवता है, जिसकी शास्त्रों में या दुनिया में या किसी व्यक्ति के द्वारा कहीं भी कोई ग्लानी नहीं है.
यू विल रिसीव डिवाइन डायरेक्शंस. यू विल रिसीव द डायरेक्शंस ऑफ द हाईएस्ट डीटी हु हैज नॉट बीन डिफेम्ड इन द स्क्रिप्चर्स और बाय एनी पर्सन इन द वर्ल्ड.
नहीं तो दुनिया में हर मनुष्य की ग्लानी होती है.
अदरवाइज every human being in the world is defamed.
अरे ईश्वर है ऊंचते ऊंचे.
अरे God is the highest.
तो अपना पहला पहला जो वारसदार बनाएगा वो ऊंचते ऊंचे बनाएगा या नीचे बनाएगा?
So will the first heir that he makes be the highest or will he be low?
ऊंचते ऊंचे वारसदार बनाता है.
He makes the highest heir.
वो है नारायण.
He is Narayan.
इसलिए मुरली ने बोला है, सबसे अच्छा सहज पुरुषार्थ है नारायण को याद करना.
That is why it has been said in the Murli, the best and easiest purusharth, spiritual effort is to remember Narayan.
क्यों?
Why?
जैसे शिव का काम है.
Just as the task of Shiv.
इस सृष्टि पर शिव का क्या काम है?
What is Shiv's task in this world?
Someone said, to purify the sinful.
उसके लिए क्या करता है?
What does he do for that?
पतित से पावन बनाने वाली बात तो बाद में.
The question of transforming sinful into pure arises later on.
क्या शिफ्ट है उसके अंदर? विशेष जो पतितों को पावन बनाए लेता है.
What special quality does he possess so that he purifies the sinful?
सदैव निराकार.
वो तो है, सदैव निराकार तो है. पढ़ाई पढ़ाता
है. Someone said he is always incorporeal. Yes, that is indeed correct. He is certainly always incorporeal. Someone said he teaches knowledge. He teaches knowledge.
उसके पास और कोई property नहीं है.
He does not have any other property.
क्या है?
What does he have?
तीनों काल का ज्ञान है.
He has the knowledge of all the three aspects of time.
तो ज्ञान देता है सत्य ज्ञान सृष्टि का.
So he gives knowledge, the true knowledge of the world.
और उस ज्ञान को लेने वाला जो है अव्वल नंबर निकलता है उसका नाम पड़ता है शास्त्रों में काम के आधार पर.
And the number one soul that emerges to obtain that knowledge receives a name in the scriptures according to the task performed.
क्या नाम पड़ता है?
What name does he receive?
Narayan.
Narayan.
Nar माने जल, ayan माने घर.
Nar means water and ayan means home.
नेपाली लोगों को तो ज्यादा पक्का हो जाना चाहिए.
It should become firmer in the intellect of the Nepali people, meaning people of Nepal.
क्योंकि यहाँ तो यादगार बनी हुई है.
Because they have a memorial here.
क्या?
What?
ताला बनाया हुआ है.
A lake has been made.
उसमें क्षीर सागर में नारायण आराम से लेटा हुआ है.
Narayan is lying comfortably in the ocean of milk.
कहाँ घर है उनका?
Where is his home?
ज्ञान जल में ही उनका घर है.
His home is in the water of knowledge itself.
ज्ञान से होती है सदगति.
Knowledge leads to true liberation. Sadgati.
और याद से होती है गति.
And remembrance leads to liberation, meaning gati.
याद करेंगे तो 63 जन्मों के पाप धुल जाएंगे.
If you remember the father, your sins of the 63 births will be washed away.
तो आत्मा कहाँ पहुँच जाएगी?
Then, where will the soul reach?
नीची स्टेज में रहेगी या ऊंची स्टेज में उड़ जाएगी?
Will it remain in a lower stage or will it fly in a high stage?
ऊंची स्टेज में परमधाम वासी हो जाएगी.
It will become a resident of the supreme abode in a high stage.
वो तो हुई गति.
That is just gati.
और वो गति तो इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट है. जो भी धर्म पिता है दूसरे धर्म के हैं वो भी पाते हैं.
And the religious fathers belonging to the other religions like Abraham, Buddha and Christ also achieve that liberation.
लेकिन वो क्या नहीं पाते?
But what do they not achieve?
सदगति नहीं पाते.
They do not achieve sadgati.
हाँ सामान्य सदगति तो उनको भी मिलती है एक जन्म की जो सबको मिलती है.
Yes, they do attain an ordinary sadgati for one birth like everyone attains it.
परंतु जो स्पेशल सदगति है अनेक जन्मों की आत्मा की वो नहीं मिलती.
But they do not attain the special sadgati of many births of the soul.
इसका मतलब याद में तो वो भी रहते हैं.
It means they also remain in remembrance indeed.
गति मिलती है.
They achieve the gati of the soul.
आत्मा की गतिवान आत्मा हो जाती है परमधाम पहुंच जाती है.
The soul becomes dynamic. It reaches the supreme abode.
लेकिन जो सदगति है वो ज्ञान के आधार पर ही होती है.
But there is sadgati only on the basis of knowledge.
बिना ज्ञान के सदगति नहीं हो सकती.
Without knowledge, there cannot be sadgati.
और गति नहीं होगी तो सदगति भी नहीं होगी.
And if there is no gati, there will not be sadgati either.
इसलिए शास्त्रों में लिख दिया रते ज्ञानान्न मुक्ति.
That is why it has been written in the scriptures, रते ज्ञानान्न मुक्ति.
बिना ज्ञान के न मुक्ति हो सकती है न जीवन मुक्ति हो सकती है.
Without knowledge, they can neither attain mukti, liberation, nor jivan mukti, liberation in life.
Paramdhamvasi bhi atma tab banegi jab apne ghar ko pehchanegi.
The soul will also become a dweller of the supreme abode only when it recognizes the home.
Apne ghar mein rehne wale baap ko pehchanegi.
When it recognizes the father living in our home.
To gyan to chahiye na.
So, knowledge is certainly required, isn't it?
गति के लिए भी ज्ञान चाहिए और सदगति के लिए भी ज्ञान चाहिए.
नॉलेज इज रिक्वायर्ड फॉर गति एज वेल एज सदगति.
तो पीछे तुमको मिलेगी दैवी मत.
सो लेटर ऑन यू विल रिसीव डिवाइन डायरेक्शंस.
और अभी मिलती है ईश्वरीय मत.
एंड नाउ यू रिसीव द डायरेक्शंस ऑफ गॉड.
और दैवी मत के बाद फिर क्या मिलेगी?
एंड व्हाट विल यू रिसीव आफ्टर द डिवाइन डायरेक्शंस?
अगर देवताओं की मत के बाद भी कहीं अटक गए.
इफ यू बिकम एंटैंगल्ड समवेयर इवन आफ्टर रिसीविंग डायरेक्शंस फ्रॉम द डीटीज.
और दैवी मत से बिछड़ गए तो फिर कौन सी मत मिलेगी?
एंड इफ यू सेपरेट योर सेल्फ फ्रॉम डिवाइन डायरेक्शंस देन विच डायरेक्शन विल यू रिसीव?
आसुरी मत मिलती.
यू रिसीव डिमोनिक डायरेक्शंस.
वो द्वापर युग से उधर ब्रॉड ड्रामा में मिलती है.
यू रिसीव देम देयर इन द ब्रॉड ड्रामा फ्रॉम द कॉपर एज ऑनवर्ड्स.
और यहाँ संगम युग की शूटिंग में भी.
एंड हियर इन द कॉन्फ्लुएंस एज शूटिंग ऑल्सो.
अगर पढ़ाई पढ़ते पढ़ते माया ने हिलाए दिया अंत समय में.
If Maya shook you during the course of the studies, in the end,
तो अंत मते सो गते हो जाएगी.
then as your thoughts in the end, so shall be your fate.
ये बात भी किसी को सीधा सीधा कहो, ये आसुरी मत है, तो बिगड़ जाते
हैं. This is demonic direction. If you just say this directly to someone, they become angry.
तीन मतें हो गई. ईश्वरीय मत, सुर मत, आसुर मत.
There are three kinds of directions. The directions of God, divine directions and demonic directions.
Unchite unchi, ishwariya mat.
The highest directions are the directions of God.
Reh, is sasti par, is duniya mein agar rehna hai.
Then, if you have to live in this world.
5000 varsh ki sasti hai na.
The world is 5000 years old, isn't it?
Is sasti mein agar rehna hai achche se. तो ऊंची से ऊंची मत है दैवी मत.
If you have to live in this world properly, then the highest directions are the divine directions.
और फिर है आसुरी मत. अगर वहां से गिरे जो ऊंची से ऊंचे देवता है नारायण.
And then there are the demonic directions. If you fall from there, from the directions of the highest deity Narayan,
aur wahan se agar bhast hue,
and if you lose your way from there,
aur koi dusre ki mat pakad li,
if you catch hold of the directions of someone else,
to jo Narayan hai usse niche kaun hai, is srishti par,
then who is lower than the Nar Narayan, meaning the one who becomes Narayan from a man in this world?
Aur koi hai ki nahi?
अरे, is there anyone lower than him or not?
Yes.
Student, human beings.
अरे सतयुग का पहला नारायण नहीं है?
हाँ, अरे it is the first नारायण of the golden age, is he not?
ऊंचे से ऊंचे नारायण है संगमयुगी, नर से नारायण बनने वाला, उसके बाद?
The highest one is the confluence age नारायण. The one who transforms from a man to Narayan, and after him,
फिर अगला नंबर पड़ता है सत्युग का नारायण.
The next number is of the golden age Narayan.
तो सत्युग ही नारायण की अगर मत पर चल गए.
So if you follow the direction of the golden age Narayan,
मैंने कृष्ण वाली आत्मा का पल्ला पकड़ लिया.
Meaning if you cling on to the soul of Krishna for support,
और वहां तक ही रहे. तो जो बीके वालों की जो गति है वो ही गति होगी या उससे ऊंची गति होगी?
And if you remain limited only to that extent, then will you attain a fate like that of the BKs or will you achieve a fate higher than them?
वो ही गति.
You will attain the same fate.
फिर बीके वालों में भी जो अव्वल ब्रह्मा को फॉलो करने वाले हैं और किसी को मानने वाले नहीं है.
Then even among the BKs, those who follow the number one Brahma and do not accept anyone else,
क्योंकि मुरली में तो बोला है.
Because it has indeed been said in the Murli,
कि कर्मों में ब्रह्मा को फॉलो करना है और डायरेक्शन बाप का मानना है.
That you have to follow Brahma's actions and accept the directions of the father.
तो मूल बात क्या हुई?
So what is the main thing?
कोई direction बाप का माने, हाँ बात तो सही.
If someone accepts the directions of the father, yes, this is true.
बाबा की बात सही.
What Baba says is true.
माने?
He accepts it.
जाने भी, समझे भी.
Knows it as well as understands it.
दूसरों को समझाए भी.
And also explains it to the others.
लेकिन फिर प्रैक्टिकल जीवन में चले नहीं.
But does not follow it in his practical life.
तो नहीं चला तो रिजल्ट क्या होगा?
So if he did not follow it, then what will be the result?
फेल होने वालों की लिस्ट में चला जाएगा या पास होने का आ जाएगा?
Will he go into the list of those who fail, or will he be called the one who passes?
फेल होने वालों की लिस्ट में चला जाएगा.
He will go into the list of those who fail.
रुद्रमाला पहले तैयार होती है.
The Rudramala, the rosary of Rudra, is prepared first.
Hai Shiv ki mala?
It is indeed Shiv's rosary.
Kya?
What?
Shiv baap ke bachchon ki mala hai.
It is the rosary of the children of the father Shiv.
Lekin practical jeevan mein?
But in the practical life?
Fail hai dharana mein ya pass?
Do they fail in dharana, practice of virtues, or do they pass?
Fail. Kyun fail hai?
They fail. Why do they fail?
Fail kyun hai?
Why do they fail?
Kyunki jo purity ki first dharana hai.
It is because the first practice of purity.
Wo purity ki first dharana jo baba ke bacche hai, raja banne wale.
Baba's children who become kings break that first practice of purity.
Baba ki property kya hai?
What is Baba's property?
Janm janmantar ki rajai.
Kingship for many births.
Dusre dharm pita hai to raja nahi banate.
Other religious fathers do not make kings.
Lekin baap aakar rajai ki padhai padhate hain aur raja banate bhi hain.
But the father comes and teaches the knowledge of kingship and makes us kings as well.
Rajgharane mein janam bhi milta hai. Jaisa purushartha kare number var purushartha anusar.
We also receive birth in the royal clan according to our purushartha, spiritual effort number wise, meaning with a higher or lower position.
To janam to mila.
So we did receive the birth.
Raja to bane.
We did become the kings.
Lekin anyamant mein rajaon ka kya hota hai kalyug mein aakar?
But what is the fate of the kings in the end after coming in the iron age?
Kya hota hai?
What happens?
Unity mein rehte hain ya disunity ho jati hai?
Do they remain in unity or does disunity appear? Someone said disunity takes place.
Kyo?
Why?
Purity khandan kar lete hain.
They break the purity.
Purity mein reh nahi pate.
They are unable to remain pure.
Impurity mein aa jate hain. Aur unity todte rehte hain.
They become impure and keep breaking the unity.
Nirdharit ban jate.
They become orphans.
To jo nirdhan ke ban gaye unka anjaam ye hua ki sabse niche girte.
So the fate of those who became orphans is that they fall down the most.
Kya? Sabse jaasti niche ho gir jate.
What? They experience the maximum downfall.
To ishwari gyan to liya.
So they did obtain the knowledge of God.
लेकिन प्रैक्टिकल जीवन में धारण नहीं की.
बट दे डिड नॉट यूज इट इन द प्रैक्टिकल लाइफ.
हाँ इतना है कि ईश्वर के बच्चे बनते हैं तो उनको घाटा नहीं होगा.
यस व्हाट इज श्योर इज दे हैव बिकम गॉड्स चिल्ड्रन सो दे विल नॉट सफर एनी लॉस.
क्यों?
व्हाई?
इसलिए घाटा नहीं होगा कि ईश्वर जो आकर के प्रवृत्ति मार्ग की स्थापना करके जाता है.
They will not suffer a loss because God comes and establishes the household path.
और जो धर्म पिताए हैं वो सब निवृत्ति मार्ग वाले हैं.
While all the other religious fathers belong to the path of renunciation.
क्या?
What?
निवृत्ति मार्ग वाले नहीं है.
They do not belong to the household path.
अच्छा ब्रह्मा कौन से धर्म की स्थापना करता है?
अच्छा विच रिलीजन डज ब्रह्मा एस्टैब्लिश?
ब्राह्मण धर्म की स्थापना करता
है. ही एस्टैब्लिशेस द ब्राह्मण रिलीजन.
जो ब्राह्मण धर्म ब्रह्मा के द्वारा स्थापन हुआ उसे प्रवृत्ति मार्ग वाला कहेंगे.
विल द ब्राह्मण रिलीजन एस्टैब्लिश्ड थ्रू ब्रह्मा बी सेड टू बी ऑफ द हाउसहोल्ड पाथ?
प्रवृत्ति मार्ग वाला तो दिखाई नहीं पड़ता.
It certainly does not appear to be of the household path.
Pravritti marg wala Brahma bhi nahi hai.
Brahma himself does not belong to the household path.
Aur Ibrahim, Buddha, Christ ko to baat chodo.
Leave aside the other religious fathers like Abraham, Buddha, Christ.
Jab Brahma hi pravritti marg wala nahi hai.
When Brahma himself does not belong to the household path.
Aur baap pravritti marg mein sthapan karke jaate.
and when the father establishes the household path before going,
तो जो ज्ञानी आत्माएं हैं, रुद्रमाला के मन के हैं, वो convince कर लेते हैं.
Then the knowledgeable souls, the beads of the Rudramala, convince them.
किनको?
Whom?
जो ब्रह्मा के पक्के follower हैं.
Those who are the firm followers of Brahma,
पवित्रता को practical जीवन में अपनाने वाले हैं, भले प्रवृत्ति में नहीं हैं.
Those who adopt purity in their practical life, although they do not have a household.
सारी ब्रह्मा कुमारी सन्यासी हैं, ये प्रवृत्ति में.
Are all the Brahma Kumaris sannyasis or householders?
Practical जीवन क्या कहता है?
What does their practical life indicate?
सन्यासी हैं.
They are sannyasis.
तो उन सन्यासियों में पावर है या नहीं है?
So, do those sannyasis have power or not?
Purity की पावर तो है.
They do have the power of purity.
दुनिया के सारे काम purity से होते हैं.
All the tasks of the world are accomplished through purity.
अब उन्हें purity की सच्ची परिभाषा नहीं मालूम.
Now, they do not know the true definition of purity.
अंधे.
They are blind.
तो एक कहानी बनी हुई है अंधे और लंगड़े की.
So, there is the story of a blind and a lame person.
रुद्रमाला के बच्चे जो बाप के बच्चे हैं, तो वो प्योरिटी के लंगड़े हैं.
The children of the Rudramala, who are the father's children, are lame in the subject of purity.
और जो ब्रह्मा के बच्चे हैं, वो ज्ञान के अंधे हैं, फर्स्ट क्लास बच्चे.
And Brahma's children are blind in the subject of knowledge. They are first class children.
First class?
They are indeed first class.
लेकिन आँखों के?
But what about their eyes of knowledge?
आँखों के अंधे.
They are blind with their eyes of knowledge.
तो दोनों का मेल कराए देते.
So he enables the meeting of both of them.
शिव बाबा की युक्ति क्या है?
What is शिव बाबा's tactic?
दोनों का भले रुद्रमाला पहले तैयार होती है, सफल नहीं होती है.
Both, although the rosary of Rudra is prepared first, it does not succeed.
लेकिन दोनों का मेल कराए देने से क्या होता है?
But what happens when both of them are united is
कि लंगड़ा जो है वो अंधे का सहयोग ले लेता है.
That the lame person takes the support of the blind person.
अंधा लंगड़े का सहयोग ले लेता है.
And the blind person takes the help of the lame person.
लंगड़ा चल ही तो नहीं सकता प्योरिटी में.
It is just that the lame person cannot walk on the path of purity.
लेकिन रास्ता तो बता सकता है.
But he can definitely show the path.
और अंधा?
And what about the blind person?
अंधा देख ही तो नहीं सकता.
The blind person just cannot see.
लेकिन सारा वजन जो लंगड़ा है उसका उठा तो सकता है.
But he can definitely carry the entire burden of the lame person.
तो सारा वजन वो ब्रह्मा को फॉलो करने वाले जो फर्स्ट क्लास है विजयमाला की मन के.
So the first class souls who follow Brahma, the beads of the rosary of victory, carry the entire weight.
ऐसे तो ब्रह्मा को फॉलो करने वाले इस्लामी बहुत ही क्रिश्चियन भी हैं.
In a way, there are also the Islamic people, Buddhists, Christians among the root souls who follow Brahma.
BK में बहुत भरे पड़े हैं.
There are many such souls among the BKs.
लेकिन वो first class follower ब्रह्मा के नहीं हैं.
But they are not the first class followers of Brahma.
तो जो first class follower है विजयमाला वो आधार ले लेती है.
So the first class followers of the Vijayamala take the support.
किसका?
Whose?
ज्ञानियों का.
Of the knowledgeable ones.
जब तक ज्ञानियों का आधार न ले.
Until he takes the support of the knowledgeable ones.
तब तक अंधा अपनी मंजिल को पूरा नहीं कर सकता.
The blind person cannot reach his goal.
और लंगड़े भी जब तक उन अंधों को सपोर्ट न करें तब तक वो विषय वैतरणी नदी पार नहीं कर सकते.
And until the lame ones support the blind ones, they cannot cross the river of vices either.
तो ये ड्रामा में नूड है.
So it is fixed in the drama.
कि दोनों का मेल कराते हैं बाबा और काम सफल हो जाता है.
That Baba enables the union of both of them and the task becomes successful.
हाँ, इतना अंतर जरूर पड़ता है.
Yes, there is certainly this difference.
कि जो ज्ञानी तू आत्मा है वो मुझे विशेष प्रिय है.
That the knowledgeable souls are especially dear to me.
ये नहीं कहा पवित्र आत्मा मुझे विशेष प्रिय है.
It has not been said the pure souls are especially dear to me.
क्या?
What?
प्योरिटी की तो बड़ी महिमा है.
प्योरिटी प्रेज द लॉर्ड.
प्योरिटी के बिना दुनिया में कोई काम होता ही नहीं.
नो टास्क एट ऑल इन द वर्ल्ड इज अकम्प्लिश्ड विदाउट प्योरिटी.
अभी भी जो दुनिया चल रही है वो किस बात के आधार पर चल रही है.
इवन नाउ ऑन व्हाट बेसिस इज टुडेज वर्ल्ड वर्किंग.
अभी भी कहीं न कहीं प्योरिटी है तो दुनिया चल रही है.
इवन नाउ देयर इज प्योरिटी समवेयर और अदर Which is why the world is functioning.
अच्छा चलो दुनिया की बात छोड़ो. ब्राह्मणों का बेसिक संगठन कैसे चल रहा है.
अच्छा लीव द आउटसाइड वर्ल्ड. हाउ इज द गैदरिंग ऑफ द ब्राह्मण्स इन द बेसिक नॉलेज फंक्शनिंग.
ब्रह्मा के कोई न कोई ऐसे फॉलोअर हैं जो प्योरिटी में बड़े पक्के हैं.
देर आर सम और अदर फॉलोअर्स ऑफ ब्रह्मा हु आर वेरी फर्म इन प्योरिटी.
कुछ भी नहीं है अब सिवाय भक्ति मार्ग के आडम्बर के.
अदरवाइज देर इज नथिंग बट द शो ऑफ द पाथ ऑफ भक्ति अमंग देम नाउ.
कहाँ?
वेयर?
ब्राह्मणों की बेसिक दुनिया.
इन द वर्ल्ड ऑफ द बेसिक नॉलेज ब्राह्मण्स.
लेकिन फिर भी एक अंश मात्र आत्माएं ऐसी हैं जरूर जो प्योरिटी में ब्रह्मा की पक्की फॉलोअर है.
बट इवन सो देर इज अ माइन्यूट परसेंटेज ऑफ सोल्स विच आर फर्म फॉलोअर्स ऑफ ब्रह्मा इन प्योरिटी.
इसलिए संस्था बड़े मजे में चल रही है.
दैट इज वाई द इंस्टीट्यूशन इज वर्किंग वेरी स्मूथली.
जो रुद्रमाला के मणके हैं उनको तो लोड़े आ रहे हैं.
द बीड्स ऑफ द रुद्रमाला आर सफरिंग अ लॉस.
लेकिन वो बड़े मजे में चल रहे हैं.
बट दे द बी केस आर प्रोग्रेसिंग कम्फर्टेबली.
तो इससे क्या साबित हुआ.
सो व्हाट डज इट प्रूव.
कि दुनिया का हर काम प्योरिटी से संपन्न होता रहता है.
That every task of the world is accomplished through purity.
लेकिन फिर भी बाबा का क्या कहना है.
Even so, what does Baba say?
Pure, पवित्र आत्मा मुझे प्रिय है या ज्ञानी तो आत्मा मुझे विशेष प्रिय है.
Do I like the pure soul or do I especially like the knowledgeable soul?
सिर्फ प्रिय नहीं विशेष प्रिय है.
They, meaning the knowledgeable souls, are not just dear, but especially dear.
क्या?
What?
साधारण प्रिय नहीं है विशेष प्रिय है.
They are not ordinarily dear. They are especially dear.
माने विजयमाला विशेष प्रिय नहीं है.
It means that the विजयमाला is not especially dear.
प्रैक्टिकल जीवन में पवित्रता को धारण कर लेते हैं लेकिन ज्ञान नहीं है.
They do imbibe purity in the practical life, but they do not have knowledge.
पवित्रता किसे कहा जाता है सच्ची वो बुद्धि में बात उनके बैठ ही गई.
इट हैज नॉट सैट इन देयर इंटेलेक्ट व्हाट इज कॉल्ड रियल प्यूरिटी.
अगर वो बात बुद्धि में बैठी हुई हो तो रुद्रमाला के सामने जो वो अड़चने डाल रहे हैं.
इफ दैट हैड सैट इन देयर इंटेलेक्ट देन द ऑब्स्टिकल्स दैट दे आर क्रिएटिंग.
दीवारें खड़ी कर रहे हैं.
द वॉल्स दैट दे आर इरेक्टिंग इन द पाथ ऑफ द रुद्रमाला सेइंग
अरे ये अपवित्र हैं अपवित्र हैं अपवित्र हैं ये बड़े पतित हैं बड़े पतित हैं बड़े कामी हैं.
अरे दे आर इम्प्योर दे आर इम्प्योर दे आर इम्प्योर दे आर वेरी सिंपल दे आर वेरी सिंपल दे आर वेरी लस्टफुल.
बंदरों के सर ताले.
दे आर द हेड्स ऑफ द मंकीज.
ये बात कभी न कहें.
दे वुड नेवर स्पीक लाइक दिस.
तो ये ज्ञान उनकी बुद्धि में जब गहरा बैठता है.
So they will never say this when this knowledge sits in their intellect deeply.
कि सच्ची प्रवृत्ति मार्ग जो है वो कीचड़ में रहते हुए भी कमल के समान जीवन होना चाहिए.
When they understand that the true household path is that the life should be like a lotus even while living in mud.
जिसकी पूजा बहुत होती है संसार में.
The one who is worshipped a lot in the world.
कौन है जिसकी पूजा होती है.
Who is worshipped?
पूजा का आधार क्या होता है.
What is the basis of worship?
प्योरिटी।
इस संसार में ऐसा कौन है जो ऐसी प्योरिटी धारण करता है 100%?
हु इम्बाइब्स 100% प्योरिटी इन दिस वर्ल्ड?
जिसके मंदिर दुनिया में सबसे जास्ती बने हुए हैं।
द वन हुज मैक्सिमम नंबर ऑफ टेम्पल्स आर बिल्ट इन द वर्ल्ड?
कौन है?
हु इज इट? समवन सेड शंकर।
शंकर नहीं,
नॉट शंकर
है? शंकर नहीं, शंकर की तो मूर्ति होती है।
नॉट शंकर, देयर इज जस्ट द आइडल ऑफ शंकर।
शिव।
समवन सेड शिव। शिव।
शिव जो है वो बाबा है।
द वन हु इज शिव इज बाबा।
क्या?
वॉट?
शिव पिता की नहीं पूजा होती है।
द फादर शिव इज नॉट वर्शिप्ड।
बिंदु की पूजा नहीं होती है।
अ पॉइंट इज नॉट वर्शिप्ड।
पूजा किसकी होती है?
हु इज वर्शिप्ड?
बड़े रूप की पूजा होती है या छोटे रूप की पूजा होती है?
इज अ बिग फॉर्म वर्शिप्ड और अ स्मॉल फॉर्म वर्शिप्ड?
बड़े रूप की पूजा होती है।
अ बिग फॉर्म इज वर्शिप्ड।
जिसको शिव बाबा कहा जाता है।
द वन हु इज कॉल्ड शिव बाबा।
बाबा माने साकार और निराकार का मेल।
बाबा मीन्स द कॉम्बिनेशन ऑफ द कॉर्पोरियल वन एंड द इनकॉर्पोरियल वन।
उसकी पहली यादगार सोमनाथ मंदिर है।
इट्स फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मेमोरियल इज द टेम्पल ऑफ सोमनाथ। सोमनाथ इज अ टेम्पल डेडिकेटेड टू शिव इन गुजरात इंडिया।
सोमनाथ मंदिर में जो लिंग था वो लिंग है साकार की यादगार।
द लिंग oblong stone worshipped in all India in the temple of Somnath is a memorial of the corporeal one.
और जो उसमें हीरा जड़ा हुआ था बिंदु रूप वो किसकी यादगार?
And whose memorial is the diamond which was engraved on it like a point?
शिव ज्योति बिंदु की यादगार।
It is a memorial of the point of light Shiv.
अब बिंदी की पूजा तो हो नहीं सकती।
Well, a point cannot be worshipped.
बिंदी कैसे पूजा करेंगे?
How can a point be worshipped?
बिंदी को याद किया जा सकता है लेकिन पूजा पूजा नहीं हो सकती।
A point can be remembered, but what about its worship? It cannot be worshipped.
पूजा तभी हो सकती है जब वो ज्योतिबिंदु साकार में प्रवेश करे।
It can be worshipped only when that point of light enters the corporeal one.
तो जिस साकार में प्रवेश करता है वो अपनी इंद्रियों को निराकारी स्टेज में थमाई लेता है।
So the corporeal one whom he enters stabilizes his indriya, meaning parts of the body used to perform actions and sense organs, in an incorporeal stage.
जो आखिरी स्टेज है पुरुषार्थ की, उस आखिरी स्टेज में ऐसी निराकारी स्टेज बनती है कि वो सदैव ही कीचड़ में पड़ा रहे।
इन द लास्ट स्टेज ऑफ पुरुषार्थ ही अटेन्स सच इनकॉर्पोरियल स्टेज दैट इवन इफ ही ऑलवेज रिमेन्स इन मड,
तो भी उसकी बुद्धि मन बुद्धि रूपी आत्मा है ना?
हिज इंटेलेक्ट, द सोल इज इन द फॉर्म ऑफ द माइंड एंड द इंटेलेक्ट, इजंट इट?
कहाँ रहेगी?
वेयर विल इट रिमेन?
परम धामवासियों के।
इट विल बी अ रेजिडेंट ऑफ द सुप्रीम अबोर्ड।
तो उसे प्योर कहेंगे इम्प्योर कहेंगे?
सो विल ही बी कॉल्ड प्योर और इम्प्योर?
प्योर ही है।
ही सर्टनली रिमेन्स प्योर।
क्योंकि मन जिस इंद्रिय के साथ होता है वो इंद्रिय अपना भोग भोग सकती है।
बिकॉज द इंद्रिय टू विच द माइंड रिमेन्स अटैच्ड, दैट इंद्रिय कैन एंजॉय इट्स प्लेजर।
मन अगर साथ नहीं है तो इंद्रिय अपना भोग नहीं भोग सकती।
If the mind is not attached to the indriya, then that indriya cannot enjoy pleasure.
ऐसे अक्सर अनुभव किया होगा।
You must have often experienced.
रास्ते में हम कहीं जाते हैं, हमारी आंखें खुली रहती हैं।
That if you go somewhere on a path, your eyes remain open.
आंखें खुली रहती हैं, लेकिन हम ऐसी गहरे याद में होते हैं।
The eyes remain open, but you are in such deep remembrance of someone.
क्योंकि देहबान की जो याद है ना, वो स्त्री पुरुष का लगाव है।
because the remembrance in body consciousness is an attachment between a woman and a man.
Mehbooba, ye mehboob apne mehbooba ki yaad mein jab khoya hua hota hai, to sab bhool jata hai.
When a lover is lost in the thoughts of his beloved, he forgets everything.
Aankhein khuli hui hai, raasta chalta jata hai, usse poocha jata hai, tumhari aankhon ke samne kaun kaun guzar gaye?
The eyes are open. He keeps walking on the path. If he is asked, who passed before your eyes?
To batata hai.
Does he say it?
Nahi bata pata. Kyon nahi bata pata?
He is unable to say it. Why is he not able to say it?
Kyunki man mehbooba mein laga hua tha.
It is because his mind was busy in the thoughts of the beloved.
Aankhein bhale khuli hui hain.
Although the eyes were open.
Aise hi aur indriyon ka bhi yahi hisab hai.
It is the same case with the other indriya as well.
Kya?
What?
Wo chahe gyan indriya ho aur chahe karma indriya ho.
Whether they are sense organs, gyanendriya or indriya for actions, karmendriya.
Agar karmendriya ya gyanendriya unke saath man saath nahi de raha hai.
If the mind is not with the karmendriya or the gyanendriya,
to wo apna bhog hi nahi sakti.
Then they cannot enjoy pleasure at all.
Ye man isliye 11th indri mana jata hai.
That is why this mind is considered to be the 11th indriya.
Aankhon se dikhai nahi padta, itni sukshm indriya hai.
It is not visible to the eyes. It is such a subtle indriya.
Vibration banane wali indri to hai.
It is an indriya that creates vibrations.
Aur duniya jo palatti hai wo vibration se palatti hai. कर्मेंद्रियों से पलटती है.
एंड डज द वर्ल्ड चेंज थ्रू द वाइब्रेशंस और थ्रू द कर्मेंद्रिया? स्टूडेंट्स, वाइब्रेशंस.
जो सतयुग का नारायण होगा वो वाइब्रेशन को पलटने वाला नहीं होगा.
द नारायण ऑफ द गोल्डन एज विल नॉट चेंज द वाइब्रेशंस.
क्या?
व्हाट?
उसके द्वारा जो सृष्टि चलेगी, लक्ष्मी वो राधा कृष्ण का जो जन्म होगा वो वाइब्रेशन से होगा या दृष्टि से होगा?
विल द प्रोजेनी बॉर्न थ्रू हिम, विल राधा एंड कृष्ण हु आर बॉर्न थ्रू हिम बी बॉर्न थ्रू वाइब्रेशंस और थ्रू विजन?
सतयुग का पहला नारायण,
द फर्स्ट नारायण ऑफ द गोल्डन एज,
उसमें कौन सी ताकत होगी जो राधा कृष्ण का जन्म देगा?
थ्रू विच पावर विल ही गिव बर्थ टू राधा एंड कृष्ण?
नहीं.
Someone said through vibrations. No.
वाइब्रेशन की ताकत होती है. लक्ष्मी नारायण के चित्र में नीचे देखो, राधा कृष्ण एक दूसरे को देख रहे हैं या सामने है उनकी नजर.
If he had the power of vibrations, then look at the lower portion of the picture of लक्ष्मी नारायण. Are Radha and Krishna looking at each other or are they looking straight?
हैं? दृष्टि से देख रहे हैं.
They are looking at each other.
अगर नहीं देखे तो सृष्टि पैदा नहीं कर सकते.
इफ दे डू नॉट लुक एट ईच अदर दे कैनॉट रिप्रोड्यूस.
यानी जो दृष्टि है, जो वाइब्रेशन बनाने वाली चीज है दृष्टि, वो भी उनकी संपूर्ण नहीं है.
इट मीन्स दैट देयर विजन विच क्रिएट्स वाइब्रेशंस इज नॉट परफेक्ट.
आंखों से अंधा आदमी हो जाए तो देख सकेगा?
विल अ पर्सन बी एबल टू सी थ्रू द आईज इफ ही बिकम्स ब्लाइंड?
नहीं देख सकेगा.
He will not be able to see.
आंखों का सुख नहीं ले सकता.
He cannot enjoy the pleasure of sight.
तो आंखें जो है उनके साथ मन जरूर चाहिए.
So the mind is certainly required along with the eyes.
भले आंखें अति सूक्ष्म है.
Although the eyes are very subtle.
आंखों के लिए खास बोला है.
It has especially been said for the eyes.
क्या?
What?
दृष्टि अगर पावन हो जाए तो फिर और क्या चाहिए?
इफ द विजन बिकम्स प्योर देन व्हाट एल्स इज रिक्वायर्ड?
आंख जो है वो पतिति भी बनाती है बहुत, और आंख पावन भी बहुत बनाती है, ताकत बहुत है.
द आईज मेक अस वेरी सिंपल एंड द आईज ऑल्सो मेक अस वेरी प्योर, देर इज अ लॉट ऑफ पावर इन देम.
लेकिन फिर उसके साथ अगर मन नहीं है तो आंख भी बेकार हो जाती.
बट इफ द माइंड इज नॉट विद देम द आईज विल बिकम अ वेस्ट.
तो ये जो पावर है मन की वाइब्रेशन बनाने की पावर, ये सारी दुनिया को चेंज करती है।
दिस पावर ऑफ द माइंड, द पावर टू क्रिएट वाइब्रेशंस, चेंजेस द एंटायर वर्ल्ड।
सारी दुनिया कैसे चेंज होगी? वाचा से चेंज नहीं होगी।
हाउ विल द एंटायर वर्ल्ड चेंज? इट विल नॉट चेंज विद वर्ड्स।
दृष्टि देने लेने से चेंज नहीं होगी।
इट विल नॉट चेंज थ्रू द एक्सचेंज ऑफ दृष्टि, मीनिंग लुकिंग एट ईच अदर।
कैसे चेंज होगी?
हाउ विल इट चेंज?
पांच तत्व कैसे चेंज होंगे?
हाउ विल द फाइव एलिमेंट्स चेंज?
पांच तत्वों को तो दृष्टि होती ही नहीं है।
द फाइव एलिमेंट्स डू नॉट हैव आईज।
ये जानवर, ये कीड़े मकोड़े, चलो इनको आंखें तो होती है, लेकिन क्या ये बैठ के दृष्टि लेंगे?
दीज एनिमल्स, दीज वर्म्स एंड इंसेक्ट्स हैव आईज, बट विल दे सिट एंड टेक दृष्टि?
ये तो दृष्टि नहीं लेंगे।
दे विल नॉट टेक दृष्टि।
जानवर बुद्धि है।
दे हैव एन एनिमल्स इंटेलेक्ट।
वो कैसे दृष्टि लेंगे?
हाउ कैन दे टेक दृष्टि?
फिर वो चेंज कैसे होंगे?
देन हाउ विल दे चेंज?
चेंज होंगे।
दे विल चेंज थ्रू वाइब्रेशंस।
मन एकाग्र अगर हो जाए तो सारी इंद्रियों को कंट्रोल कर सकता है।
इफ द माइंड बिकम्स फोकस्ड, इट कैन कंट्रोल ऑल द इंद्रिया।
इसलिए बाबा ने सीधा ही उपाय बता दिया। क्या?
दैट इज वाई बाबा हैज गिवन अ सिंपल आइडिया। वॉट?
उल्टा पलटा लटकने की जरूरत नहीं हठ योगियों की तरह।
देर इज नो नीड टू हैंग अपसाइड डाउन लाइक द हठ योगीज। हठ योगीज आर पीपल हु परफॉर्म योगा बाय डूइंग टफ आसन्स, मीनिंग फिजिकल पॉस्चर्स।
एक टांग पर खड़े होने की जरूरत नहीं है।
देर इज नो नीड टू स्टैंड ऑन वन लेग।
उल्टा लटकने की जरूरत नहीं है।
देर इज नो नीड टू हैंग अपसाइड डाउन।
हठ योगी क्या करते रहे? शरीर की इंद्रियों को कंट्रोल करते रहे, आसन लगाते रहे, प्राणायाम कराते रहे, या उन्होंने मन को कंट्रोल करना सिखाया?
वॉट हैव द हठ योगीज बीन डूइंग? दे हैव बीन कंट्रोलिंग द कर्मेंद्रिया। दे हैव बीन डूइंग आसन्स। दे हैव बीन डूइंग प्राणायाम, मीनिंग ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस। और डिड दे टीच हाउ टू कंट्रोल द माइंड?
वो मन बुद्धि का रूप ही नहीं जानते।
दे डू नॉट नो द फॉर्म ऑफ द माइंड एंड इंटेलेक्ट एट ऑल।
मन बुद्धि का जो रूप है वो बाप ने आकर के बताया।
द फादर केम एंड टोल्ड अस अबाउट द फॉर्म ऑफ द माइंड एंड इंटेलेक्ट।
मन बुद्धि को ही आत्मा कहा जाता है।
द माइंड एंड इंटेलेक्ट इटसेल्फ इज कॉल्ड द सोल।
बाप ने बताया ये मन बुद्धि जो है वो तुम्हारी ज्योति बिंदु है, आत्मा है।
द फादर हैज सेड दैट योर माइंड एंड इंटेलेक्ट इज अ पॉइंट ऑफ लाइट, अ सोल।
गीता ने उसके लिए बोला अणुअणीयान समनुस्मरेति है।
इट हैज बीन सेड इन द गीता अबाउट दिस, अणुअणीयान समनुस्मरेद्य।
अणु से भी अणु रूप है।
इट्स फॉर्म इज सटलर देन इवन एन एटम।
मन बहुत सूक्ष्म है।
द माइंड इज वेरी सटल।
तो मन बुद्धि की जो पावर है उसको अगर एकाग्र कर लिया जाए तो वाइब्रेशन की पावर आ जाती है।
सो इफ द पावर ऑफ द माइंड एंड इंटेलेक्ट इज फोकस्ड, वी गेट द पावर ऑफ वाइब्रेशंस।
ऐसी पावर आ जाती है कि आदमी अगर उस स्थिति में टिक जाए तो संकल्प मात्र किया और काम सिद्ध हुआ।
वी गेट सच पावर दैट इफ अ पर्सन बिकम्स कॉन्स्टेंट इन दैट स्टेज देन एज सून एज ही क्रिएट्स अ थॉट द टास्क विल बी अकम्प्लिश्ड।
उसको कहते हैं संकल्प सिद्धि।
इट इज कॉल्ड द सक्सेस ऑफ थॉट्स।
कैसी सिद्धि?
द सक्सेस ऑफ व्हाट?
संकल्पों की भी सिद्धि हो जाती है।
द थॉट्स डू सक्सीड।
कोई काम हो दुनिया का फट से हो।
एनी टास्क ऑफ द वर्ल्ड विल बी अकम्प्लिश्ड इमीडिएटली।
लेकिन किसके द्वारा होगा?
बट हु कैन अकम्प्लिश इट?
उसी के द्वारा होगा जिसने अपनी काम इंद्रियों को पूरा कंट्रोल कर लिया हो।
इट कैन बी अकम्प्लिश्ड ओनली थ्रू दैट पर्सन हु हैज कंट्रोल्ड हिज ऑर्गन ऑफ लस्ट कम्प्लीटली।
नहीं तो काम इंद्रिय का स्वभाव क्या है?
अदरवाइज व्हाट इज द नेचर ऑफ द ऑर्गन ऑफ लस्ट?
खास करके पुरुषों की काम इंद्रिय तो कंट्रोल होती ही नहीं।
एस्पेशली द ऑर्गन ऑफ लस्ट ऑफ द मेन डज नॉट कम अंडर देयर कंट्रोल एट ऑल।
पुरुषों के लिए बाबा ने क्या बोल दिया?
What has Baba said for men?
सारे पुरुष दुर्योधन दुशासन है। क्यों?
all the men are Duryodhan and Dushasan, meaning villainous characters in the epic Mahabharat.
Why?
क्यों दुर्योधन है?
Why are they Duryodhan?
क्यों दुष्ट युद्ध करने वाले?
Why do they wage a wicked war?
क्यों दुष्ट शासन करने वाले?
Why are they Dushasan, meaning those who rule in a wicked way?
प्यार का शासन नहीं कर सकते?
Can't they rule with love?
प्यार से किसी को बस में नहीं कर सकते?
Can't they control someone with love?
नहीं कर सकते.
They cannot.
काम जीते जगत जीत कहा जाता है.
It is said that the one who gains victory over lust conquers the world.
ये काम की जो इंद्रिय है मनुष्यों के अंदर देवताओं में नहीं होती है.
This organ of lust in human beings is not present in the deities.
किसमें होती है?
In whom is it present?
मनुष्यों में होती है.
It is present in the human beings.
ये काम इंद्रिय को अगर जीत लिया तो समझो सारे संसार को जीत लिया.
If you gain victory over this organ of lust, then you can think that you have conquered the entire world.
और इस कार्य में और जो देवताएं हैं 33 करोड़ वो 100% सफल कोई भी नहीं हो पाते.
And in this task, the other 33 crore, meaning 330 million deities, are unable to become 100% successful.
चाहे अष्ट देव ही क्यों न हो लेकिन 100% सफल नहीं होते.
Be it the 8 deities, they are unable to become 100% successful.
एक ही है जिसका नाम शिव के साथ जोड़ा जाता है.
There is only one being whose name is attached to Shiv.
कौन है?
Who is it?
शंकर पाठधारी है.
It is the actor Shankar.
उसका नाम शिव के साथ क्यों जोड़ा गया? औरों का नाम क्यों नहीं जोड़ा गया?
Why has his name been joined with Shiv and why was others' name not joined with his name?
कि उसने अपनी काम इंद्रियों को बाप की याद में पूरा कंट्रोल किया.
It is because he controlled his organ of lust completely in the remembrance of the father.
इसलिए वो जो शरीर है उसकी मूर्ति तो नहीं बनाई गई.
That is why an idol of that body is not prepared.
जिसके मंदिर हो दुनिया में सबसे जास्ती.
The one whose temples are found the most in the world.
मूर्तियाँ तो बहुत थोड़ी है ना.
Idols are very few, aren't they?
मूर्तियों के मंदिर थोड़े हैं या लिंग के मंदिर ज्यादा हैं?
Are there fewer temples with idols or are there more temples of the ling?
लिंग के मंदिर ढेर सारे हैं, विदेशों में भी मिल रहे हैं.
There are numerous temples of the ling. They are being discovered even in the foreign countries.
मूर्तियाँ शंकर की मूर्ति के मंदिर बहुत कम है.
As regards the idols, there are very few temples of the idols of Shankar.
पुराने मंदिरों में शिवलिंग के साथ जैसे कंपिल में रामेश्वरनाथ मंदिर है.
In the ancient temples along with the Shivling, for example, there is the Rameshwarnath temple in Kampil.
बहुत पुराना मंदिर है.
It is a very old temple.
उसमें शिवलिंग भी रखा हुआ है और शंकर की मूर्ति भी पहले रखी हुई थी.
The Shivling is placed in it and the idol of Shankar was also placed earlier.
अब नहीं है.
It is not present now.
अब हनुमान जी को दिखा दिया.
Now they have depicted Hanuman ji.
तो पहले पहले जो प्राचीन मंदिर थे उनमें शिव के साथ शंकर की मूर्ति भी रखी जाती थी.
So initially in the ancient temples Shankar's idol also used to be placed along with Shiv's idol.
अभी भी कहीं कहीं ऐसे मंदिर हैं.
Even now there are such temples at some places.
इससे क्या साबित होता है?
What does it prove?
कि शिव की जो स्टेज है प्रैक्टिकल स्टेज वो संपन्न पुरुषार्थ की स्टेज है.
It proves that Shiv's stage, the practical stage, is a stage of complete spiritual effort, meaning Purushart.
और शंकर जो याद में बैठा हुआ है वो संपन्न पुरुषार्थ की स्टेज है या अधूरे पुरुषार्थ की स्टेज है.
Whereas Shankar, who is sitting in remembrance, is it a stage of complete purusharth or a stage of incomplete purusharth?
अरे याद में क्यों बैठा हुआ है?
अरे why is he sitting in remembrance?
याद में बैठा हुआ है इसका मतलब है अपने से ऊंचे को याद कर रहा है.
He is sitting in remembrance. It means that he is remembering someone higher than him.
उससे भी ऊंचा कोई है?
There is someone higher than even him.
बाप समान तो नहीं बना?
He has not become equal to the father.
कौन?
Who?
शंकर. याद में बैठा है इसका मतलब बाप समान नहीं बना.
शंकर. He is sitting in remembrance. It means that he has not become equal to the father.
बाप समान जब बन जाए तो नारायण नाम संसार में प्रत्यक्ष हो जाता है.
When he becomes equal to the father, then the name Narayan is revealed in the world.
इसलिए बोला कि शिव बाबा को याद करना फिर भी कठिन है.
That is why it has been said, still it is difficult to remember Shiv Baba.
बहुत से लोग कहते हैं हमें बाबा का चेहरा ही भूल जाता है.
Many people say, we forget Baba's face itself.
अरे आंखों से देखी हुई चीज कैसे भूल जाती है?
अरे how do they forget something seen through the eyes?
क्यों भूल जाती
है? Why do they forget it?
63 जन्मों का हिसाब किताब है ही नहीं.
There is no karmic accounts of the 63 births at all with Baba.
63 जन्मों में जो आत्माएं ज्यादा संसर्ग संपर्क में आई होंगी, संबंध में आई होंगी, उनको ज्यादा याद रहेगा, या जो संपर्क संबंध में आई नहीं होंगी उनको ज्यादा याद रहेगा?
Will the souls who might have come more in contact, connection, in relationship during the 63 births remember him more, or will those who have not come in contact and connection at all remember him more?
जो ज्यादा संपर्क संबंध में आई है तो उनको जरूर याद रहेगा.
Those who have been more in contact and relationship will certainly remember him.
तो ये हिसाब किताब है कि बहुत से ऐसे कहते हैं.
So it is due to their karmic accounts that many people say,
हम शिव बाबा को याद तो करते हैं, पहले के मुकाबले हमारी याद सहज तो हो गई है.
We do remember Shiv Baba. When compared to earlier times, our remembrance has indeed become easier.
ब्रह्म कुमारी आश्रम में जब चलते बिंदु को याद करना बताते थे वो तो कठिन लगता है.
When we used to go to the Brahma Kumari ashram, they used to tell us to remember the point. We certainly used to find it difficult.
ज्यादा टिक ही नहीं पाते थे.
We were unable to become constant in remembrance as much.
अभी टिकते तो हैं लेकिन बाबा का साकार चेहरा याद नहीं रहता.
Now we do become constant in remembrance, but we do not remember the corporeal face of Baba.
तो उसका मूल कारण ये हुआ पूर्व जन्मों का हिसाब किताब.
So the main reason is the karmic accounts of the past births.
अब जिनको जास्ती याद रहता है इससे क्या हिसाब किताब साबित रहता है होता है?
Well, those who remember more, what kind of karmic account does it prove to be?
कि पूर्व जन्मों का हिसाब किताब उनका अच्छा है.
It proves that their karmic accounts of the past births are good.
खराब नहीं है.
They are not bad.
तो वो जो शख्सियत है.
So regarding that personality,
मुकर्रर रथ,
the permanent chariot,
उसका आखिरी स्टेज का पुरुषार्थ ऐसा हो जाता है.
His purusharth in the last stage becomes such.
कि 16,000 गोपियां भी दिखाई हो.
That even 16,000 gopis have been depicted with him.
शास्त्रों में तो कृष्ण का नाम डाल दिया.
Krishna's name has been inserted in the scriptures.
और कृष्ण की तो बात है ही नहीं.
But this is not at all Krishna.
कि कृष्ण को 16,000 रानियां थी.
Krishna had 16,000 queens.
ये तो वास्तव में शिव के पार्ट की बात है.
It is actually about Shiv's part.
कि वो कीचड़ में ही पड़ा रहे तो भी मन बुद्धि से उपराम स्टेज में रहता है.
That even if he lies in mud, meaning a vicious atmosphere, he remains in a detached stage through the mind and intellect.
इसीलिए पूजा होती है.
That is why he is worshipped.
तो पूजा ये निवृत्ति मार्ग की है या प्रवृत्ति मार्ग की?
So is this worship a worship of the path of renunciation, निवृत्ति मार्ग, और ऑफ द हाउसहोल्ड पाथ, प्रवृत्ति मार्ग?
जो मंदिरों में पूजा शिव की दिखाई गई है वो प्रवृत्ति मार्ग की पूजा है या निवृत्ति मार्ग की पूजा है?
द वर्शिप ऑफ शिव दैट हैज बीन डिपिक्टेड इन द टेम्पल्स, इज इट अ वर्शिप ऑफ द हाउस होल्ड पाथ और ऑफ द पाथ ऑफ रिनाउंसिएशन?
प्रवृत्ति मार्ग की पूजा है, फर्स्ट क्लास प्रवृत्ति मार्ग की पूजा है।
इट इज अ वर्शिप ऑफ द हाउस होल्ड पाथ, इट इज द वर्शिप ऑफ द फर्स्ट क्लास हाउस होल्ड पाथ।
ये प्रवृत्ति मार्ग का जो लक्ष्य है ऊंचे से ऊंचा, वो आकर के शिव बाबा ने दिया है और शिव बाबा ने ही समझाया है।
ओनली शिव बाबा हैज गिवन एंड हैज एक्सप्लेन द हाईएस्ट गोल ऑफ द हाउस होल्ड पाथ ऑन कमिंग।
न ऐसा लक्ष्य कोई दे सकता है और न कोई समझा सकता है।
नीदर कैन एनीवन गिव सच अ गोल नॉर कैन एनीवन एक्सप्लेन इट।
इसलिए शास्त्रों में कथाएं प्रसिद्ध हैं।
दिस इज व्हाई स्टोरीज आर फेमस इन द स्क्रिप्चर्स।
क्या?
व्हाट?
काम दहन,
द बर्निंग ऑफ लस्ट।
क्या किया?
व्हाट डिड ही डू?
काम को भस्म कर दिया।
ही मीनिंग शंकर बर्न द डीटी ऑफ लस्ट इनटू एशेस।
जो कामेंद्रिय की रचना है वो ही भस्म कर दे।
द प्लेजर ऑफ द ऑर्गन ऑफ लस्ट शुड बी बर्न इनटू एशेस।
तो क्या काम, काम का अर्थ होता है इच्छा।
सो डिड काम लस्ट, काम मीन्स डिजायर।
क्या इच्छा देवताओं की खत्म हो गई?
डिड द डिजायर्स ऑफ द डीटीज एंड?
देवताएं कोई इच्छा नहीं करते थे?
डिड द डीटीज यूज टू हैव एनी डिजायर?
करते तो थे।
दे डिड यूज टू हैव डिजायर्स।
लेकिन जो साकार रूप में प्रैक्टिकल में जो कर्मेंद्रियां कर्म करती थी और सुख भोगती थी कर्मेंद्रियों से, वो रचना खत्म हो गई।
बट द कर्मेंद्रिया दैट यूज टू परफॉर्म एक्शंस इन द कॉर्पोरियल फॉर्म इन प्रैक्टिस एंड द प्लेजर्स दैट दे यूज टू एंजॉय थ्रू द ऑर्गन ऑफ लस्ट, दोज प्लेजर्स एंडेड।
इसलिए कह दिया होए है काम अनंग।
दैट इज व्हाई इट हैज बीन सेड होए है काम अनंग।
काम देवता तो रहेगा लेकिन अंग रहित रहेगा।
द डीटी ऑफ डिजायर काम देव विल इंडीड एग्जिस्ट बट इट विल बी विदाउट द ऑर्गन ऑफ लस्ट।
देवताओं का अंग, वो काम इंद्रिय का अंग, वो काम नहीं करेगा।
दैट ऑर्गन ऑफ द डीटीज दैट ऑर्गन ऑफ लस्ट विल नॉट वर्क।
मार नहीं करेगा।
इट विल नॉट अटैक।
मनुष्यों से और देवताओं से यही खास अंतर होता है।
दिस अलोन इज द स्पेशल डिफरेंस बिटवीन द ह्यूमन बींग्स एंड द डीटीज।
मनुष्यों का काम इंद्रिय का अंग मार करता है, अगर संसर्ग संपर्क में आएगा तो छोड़ेगा नहीं।
द ऑर्गन ऑफ लस्ट ऑफ द ह्यूमन बींग्स अटैक्स इफ इट कम्स इन कॉन्टेक्ट और कनेक्शन विद अनदर बॉडी इट विल नॉट स्पेयर इट।
और देवताएं?
एंड वॉट अबाउट द डीटीज?
संसर्ग संपर्क में भी आते हैं, संबंध में भी आते हैं।
दे ऑल्सो कम इन कॉन्टेक्ट एंड कनेक्शन, दे कम इन रिलेशनशिप टू।
नजदीक भी रहते हैं।
दे ऑल्सो लिव क्लोज।
लेकिन काम इंद्रिय का जो अंग है वो मार करता ही नहीं, उसके ऊपर देवताओं का पूरा कंट्रोल हो जाता है।
बट द ऑर्गन ऑफ लस्ट डज नॉट अटैक एट ऑल, द डीटीज हैव कंप्लीट कंट्रोल ओवर इट।
और उनको सुर कहा जाता है।
एंड दे आर कॉल्ड सुर।
क्या?
वॉट?
सुर में सुर मिलाते हैं एक दूसरे को।
दे आर इन ट्यून विद ईच अदर।
उनका सुर बेसुरा नहीं होता है।
दे आर नॉट आउट ऑफ ट्यून।
जो एक कहेगा वो ही सब कहेंगे।
वट एवर समवन सेज एवरीवन एल्स विल से द सेम थिंग।
नारायण के प्रतिकूल कोई भी जा ही नहीं सकता।
नोबडी कैन गो अगेंस्ट नारायण एट ऑल।
एक मत, एक राज्य, एक भाषा होगी।
देयर विल बी वन डायरेक्शन, वन किंगडम, वन लैंग्वेज।
तो बताया कि श्रेष्ठ से श्रेष्ठ है मत ईश्वर की।
सो इट वॉज सेड दैट द मोस्ट राइटियस डायरेक्शंस आर ऑफ गॉड।
और वो ईश्वर जो है वो भी साकार में आके मत देता है या बिंदी बन के मत देता है?
एंड डज ही कम एंड गिव डायरेक्शंस बाय कमिंग इन अ कॉर्पोरियल फॉर्म और डज ही गिव डायरेक्शंस एज अ पॉइंट?
साकार में आके मत देता है।
स्टूडेंट कॉर्पोरियल, ही कम्स इन अ कॉर्पोरियल फॉर्म एंड गिव्स डायरेक्शंस।
भले साकार का पुरुषार्थ पूरा हुआ हो या न हुआ हो।
ऑल्दो द कॉर्पोरियल बींग may or may not have completed his purusharth.
To bhi mat deta hai.
Yet, he, meaning Shiv, gives directions through the corporeal.
Lekin jo daiviya mat hai srishti se srishti, usme Shiv nahi hota. Ishwar, Godfather, nahi hota.
But when the most elevated divine directions of the deities are given, Shiv, God, God the Father is not present.
So, sabse piche ki mat hai Asuri mat.
So, the last, meaning lowest directions are the demonic directions.
Parantu kisi ko agar ye kahenge tumhari Asuri mat hai, to bigad jayenge.
But if anyone is told your directions are demonic, then they will become angry.
Devata to koi banai nahi hai, jo kahe daivi mat.
Nobody has become a deity at all to say that their directions are divine.
Aur Pandavon ko to gupt hi chalna hai.
And the Pandavas have to live in secret.
Kya?
What?
Ki pratyaksh ho jaye to bhi chalega.
Or will it be okay even if they are revealed?
Chalega ki nahi chalega?
Will it be okay or not?
Chalega to, lekin thoda kathin ho jayega.
It will be okay, but it will be slightly difficult.
Agar gupt chalte rahenge to sahaj rahega.
If they continue living in secret, then it will be easy.
Jitna zyada apne ko pratyaksh karenge, man martaba mein aakar ke koi pratyaksh kar dete hai na.
The more they reveal themselves, some people reveal themselves by accepting respect and position, don't they?
Utna kathinai badhti chali jayegi.
The difficulties will continue to increase to the same extent.
To ant tak Pandavon ko to gupt hi part bajana hai.
So the Pandavas certainly have to play a secret part till the end.
Nahi to bigad padenge.
Otherwise they, the other people, will become angry.
Jo Pandav hai wo seedha seedha kisi ko na kahe ki hum Pandav hai tum Kaurav ho.
The Pandavas should not tell anyone directly, we are the Pandavas, you are the Kauravas.
Hum direct pande ke bacche hain.
We are the direct children of the Panda, guide.
Humko Panda baap mila hai, sahi rasta batane wala.
We have found the father Panda who shows the correct path.
Sahi thikane par jo unche unche teerth sthan hai, us sthan par le jane wala, humko Panda baap hame mila hua hai.
We have found the guide father who takes us to the correct destination, the highest pilgrimage center.
Tumko nahi mila hua hai, tum Kaurav ho, hum Pandav ho.
You have not found him. You are the Kauravas and we are the Pandavas.
Are tum Pandav bane raho, lekin mujhse bolne ki, pratyaksh karne ki darkar kya hai?
Are you do remain the Pandavas. What is the need to speak through the mouth or to reveal the self?
Gupt rakhenge to nahi chalega.
Will it not be okay if you keep yourself secret?
Aur acha chalega.
It will work in a better way.
To kisi ko bigadne ka mauka hum kyun dein?
So why should we give a chance to anyone to lose his temper?
Aisa to koi nahi chahta ki hamara Kauravon ka aur Yadavon ka part ho, hamara Asuron ka part ho.
Nobody wishes to play the role of a Kaurav or a Yadav or demon.
Koi chahta hai?
Does anyone wish to play such roles?
हम चाहते हैं कि हम भी देवता बने, स्वर्ग में जाएं, स्वर्ग के नाम से ही, पैराडाइज के नाम से ही लाट टपकती है.
Everyone wants to become deities to go to heaven. Everyone's mouth dribbles just by the name of heaven, paradise.
तो पांडवों को गुप्त चलना है, नहीं तो बिगड़ पड़ेंगे.
So the Pandavas should live in secret, otherwise they will become angry.
समझते हैं बड़ा मुश्किल है.
They feel it is very difficult to live in secret.
तो बाबा कहते हैं कोशिश करके पहले पहले बात बतानी चाहिए बाप की समझाने की.
So Baba says you should try and tell them about the father's identification first of all.
क्या अपने को प्रत्यक्ष नहीं करना चाहिए कि हम पांडव हैं?
What? You should not reveal yourself saying that you are a Pandav.
हम गॉड फादर के बच्चे हैं डायरेक्ट.
You are the direct children of God the Father.
क्या कहना चाहिए?
What should you say?
पहले बाप का परिचय दो.
फर्स्ट गिव द इंट्रोडक्शन ऑफ द फादर.
बाप का परिचय जब देंगे तो शख्सियत बतानी पड़ेगी या नहीं बतानी पड़ेगी?
when you give the introduction of the father, will you have to tell them about the personality or not?
Personality batani padegi na.
You will have to tell them about the personality, won't you?
Personality ko siddh karna padega.
You will have to prove the personality.
Ki wo personality kaun hai, jisko Hindu, Musalman, Sikh, Isai, sab Adam mein Adam ke roop mein mante hain.
Which is the personality who is accepted by the Hindus, the Muslims, the Sikhs, the Christians and everyone as Adam, Adam.
Srishti ka pehla purush sab mante hain.
Everyone believes him to be the first man of the world.
Ye sabit karna hai ki ye srishti ka pehla purush hai.
You have to prove that this is the first man of the world.
5000 varsh pehle bhi ye pratyaksh hua tha.
He is the one who was also revealed 5000 years ago.
Bhagwan Godfather ne hi aakar ke usko pratyaksh kiya tha.
God the Father came and revealed him.
Aur abhi bhi Bhagwan aakar ke uski pehchan humko de raha hai.
And even now God has come and is giving us his introduction.
Agar ye baat tumne samjhai le to fir sarvyapi ki baat ud jayegi.
If you explain this, then the subject of omnipresence will vanish.
Sari duniya isi baat mein bhuli hui.
The entire world is ignorant of this very aspect.
Kis baat mein?
Of what?
Samajhte hain Bhagwan sarvyapi.
They feel that God is omnipresent.
Kahin nahi mila duniya mein. To kya kehne lage?
When they could not find him anywhere in the world, what did they start saying?
Har jagah maujood hai, jab jab mein.
They started saying, he is present everywhere. He is in every atom.
Baap ki samjhane se to manushyon ki buddhi khul jani chahiye.
The intellect of the human beings should open up with the explanation about the father.
Kya?
What?
Baap ne aakar ke pehli baat kya samjhai?
What topic did the father explain first of all on coming?
Baap shiv baap. Bindu bindu atmaon ka baap usne aakar ke pehli baat kya siddh kar di?
What topic did the father Shiv, the father of the point-like souls, prove first of all on coming? Student said something. Yes, no, that is all right.
Atma ki pehchan to di, lekin wo atma ki pehchan tum bindu ho, ye koi special pehchan nahi hui.
He did give the introduction of the soul, but that introduction of the soul, you are a point, is not a special introduction.
Ye bhi bindu atma, ye bhi bindu atma, ye bhi bindu atma.
This one is a point like soul as well as the other one is a point like soul and the third one is also a point like soul.
Kya?
What?
Bindu bindu sab special pattern kya hui?
Everyone is a point. What is the special introduction?
Nahi.
Someone said he is not omnipresent. No.
बिंदु आत्मा ये कोई स्पेशल पहचान इसलिए नहीं है कि पता नहीं लगता है कि ये कौन सी बिंदु है.
द पॉइंट लाइक सोल इज नॉट अ स्पेशल इंट्रोडक्शन बिकॉज यू कैन नॉट नो विच पॉइंट इट इज.
क्या पार्ट बजाने वाली है?
विच पार्ट दिस पॉइंट प्लेज.
आत्मा जो पार्टधारी है उसकी स्पेशलिटी का पता चला.
डिड यू कम टू नो ऑफ द स्पेशलिटी ऑफ द सोल विच इज एन एक्टर?
नहीं पता चला.
यू कुडंट नो.
तो असली पहचान तो आत्मा की भी तब कही जाए जब स्पेशलिटी का पता चले.
सो द ट्रू इंट्रोडक्शन ऑफ द सोल कैन बी सेड टू हैव बीन रिसीव्ड ओनली व्हेन यू कम टू नो ऑफ द स्पेशलिटी ऑफ दैट सोल.
तो बाप जो आते हैं शिव ज्योति बिंदु गॉड फादर वो पहले किसकी पहचान देते हैं? कौन सी आत्मा की पहचान देते हैं?
सो द फादर द पॉइंट ऑफ लाइट शिव गॉड द फादर हु कम्स. Whose introduction does he give first of all? He gives the introduction of which soul? Arey, he too gives the introduction of Alaf when he comes.
Kya?
What?
Uska jo Alaf ka part hai, wo Alaf kyun kaha gaya?
His part is of Alaf. Why was he called Alaf?
Alaf ka part isi liye Alaf kaha gaya ki aaj se lekar ke ant tak. जब तक अंतिम जन्म न आए और माया कड़ा विरोध न करे तब तक वो खड़ा रहता.
अलफ पार्ट वॉज कॉल्ड अलफ
because he remains standing from the beginning to the last birth until his last birth commences and Maya strictly opposes him.
मुकाबला करता ही रहता है.
He keeps facing them.
किसका?
Whom?
आसुरी मत देने वालों का, असुरों का.
Those who give demonic directions, the demons.
अंतिम जन्म में तो माया से सारी दुनिया हार खा ही जाती है.
The entire world indeed accepts defeat at the hands of Maya in the last birth.
जो आठ देवता है वो भी हार खा जाते हैं.
Even the eight deities suffer defeat.
तो बाप की समझानी अगर तुम कोई को देंगे.
So, if you give to anyone the father's introduction.
जो बाप ने पहले पहले समझानी दी है. किसकी समझानी दी?
Which the father has given first of all, whose introduction has he given?
बाप ने पहले पहले किसकी समझानी दी?
अरे हूज इंट्रोडक्शन हैज द फादर गिवन फर्स्ट ऑफ ऑल?
स्टूडेंट द फर्स्ट फादर ऑफ द वर्ल्ड.
हाँ, आदि पिता की पहचान.
यस, ही गेव द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द फर्स्ट फादर, आदि पिता.
अलव की पहचान दी बाप ने.
द फादर गेव द आइडेंटिफिकेशन ऑफ अलव.
अलव की समझानी दी.
ही गेव द एक्सप्लेनेशन ऑफ अलव.
पहले पहले अलग समझाओ.
फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सप्लेन अबाउट अलग.
तो बाप की पहचान से तो मनुष्यों की आंखें खुल जानी चाहिए.
सो पीपल्स आईज शुड ओपन अप विद द इंट्रोडक्शन ऑफ द फादर.
जबकि तुम तो इस बात को सिद्ध करके बतलाते हो.
बिकॉज यू टेल देम दिस फैक्ट बाय प्रूविंग इट.
क्या?
व्हाट?
कि अलग का पार्ट किसका है? तुम सिद्ध करते हो. दुनिया में कोई सिद्ध नहीं कर सकता है.
Who plays the part of Alaf? You prove it. Nobody else in the world can prove it.
बाप आकर के जो हम समझानी देते हैं उस समझाने के आधार पर हम सिद्ध कर सकते हैं कि ये बाप का पार्ट है और कोई भी बाप का पार्ट नहीं हो सकता.
We can prove it with the explanation that the father gives on coming. This is the one who plays the father's part and no one else can play the father's part.
कृष्ण भगवान तो है ही नहीं.
Krishna is certainly not God.
क्या?
व्हाट?
इसको कृष्ण भगवान कह दिया है. वो भगवान तो है ही नहीं. क्यों नहीं है भगवान?
द वन हु हैज बीन कॉल्ड गॉड कृष्ण इज सर्टनली नॉट गॉड. व्हाई इज ही नॉट गॉड?
कोई कारण होगा कि कृष्ण भगवान नहीं है.
देयर मस्ट बी सम रीजन फॉर कृष्ण नॉट टू बी गॉड.
कृष्ण भगवान इसलिए नहीं है कि सारी दुनिया की बुद्धि लगनी चाहिए भगवान में.
कृष्ण इज नॉट गॉड बिकॉज द इंटेलेक्ट ऑफ द एंटायर वर्ल्ड शुड बी फोकस्ड ऑन गॉड.
तो क्या सारी दुनिया कृष्ण को याद करती है?
सो डज द एंटायर वर्ल्ड रिमेम्बर कृष्ण?
क्रिश्चियन मुसलमान कृष्ण को याद करते हैं क्या?
डू द क्रिश्चियंस द मुस्लिम्स रिमेम्बर कृष्ण?
नहीं करते.
दे डोंट.
लेकिन सारी दुनिया जो है वो अंत समय में जो भक्ति मार्ग में भी भारतवर्ष में गायन चल रहा है.
बट इन द एंड द एंटायर वर्ल्ड इवन इन द पाथ ऑफ डिवोशन मीनिंग भक्ति द प्रेज इज फेमस इन इंडिया.
जब मरते हैं तो अंत समय क्या कहते हैं?
व्हाट डू दे से इन द एंड व्हेन पीपल डाई?
राम राम सत्य.
द नेम ऑफ राम इज ट्रू.
मुसलमान लोग भी राम अल्लाह को मानेंगे, राम जान को.
Even the Muslims will accept Ramallah, Ramjan. Ramallah is the name of a place populated by Muslim people. Ramjan is a festival celebrated by the Muslims.
क्या?
What?
जो विधर्मियों में सबसे powerful धर्म है दुनिया का.
The most powerful religion in the world among the Vidharmis, meaning those who have a religion against the fathers.
कौन सा धर्म?
Which religion is it?
Islam धर्म.
Islam.
वो भी रामल्ला को मानते हैं, रमजान को मानते हैं.
They too believe in Ramallah. They accept Ramjan.
यही नाम क्यों दिया?
Why did they mention only this name?
कृष्ण अल्लाह क्यों नहीं कह दिया?
Why did they not mention the name Krishna Allah?
कृष्ण जान क्यों नहीं कह दिया?
Why did they not call it Krishna Jan?
क्यों नहीं कह दिया?
Why didn't they say this?
क्योंकि कृष्ण की आत्मा के द्वारा ये कार्य होता ही नहीं.
इट इज बिकॉज this task is not performed through the soul of Krishna at all.
राम वाली आत्मा के द्वारा ये कार्य संपन्न होता है.
This task is accomplished only through Ram's soul.
तो तुम सिर्फ कहते हो शिव भगवान वाच.
So you just say शिव भगवान वाच, meaning God Shiv speaks.
दुनिया में कोई भी शिव भगवान वाच नहीं कहता, कहेंगे कृष्ण भगवान वाच.
Nobody else in the world says शिव भगवान वाच. They will say कृष्ण भगवान वाच, meaning God Krishna speaks.
और तुम कहते हो कृष्ण भगवान वाच नहीं, शिव भगवान वाच.
And you say, you don't say कृष्ण भगवान वाच, you say शिव भगवान वाच.
शिव का नाम कृष्ण के साथ नहीं जोड़ा जाता.
Shiv's name is not joined with Krishna's name.
किसके साथ जोड़ा जाता है?
With who is it joined?
शिव का नाम शंकर के साथ ही जोड़ा जाता है.
Shiv's name is joined only with Shankar's name.
और भक्ति मार्ग में भी कहा है.
And in the path of bhakti too, it has been said.
औरो एक गुप्त मत सबै कहूं कर जोर.
औरो एक गुप्त मत सबै कहूं कर जोर. Meaning, I tell everyone a secret with folded hands.
शंकर भजन बिना नर भगत की पावे मोर.
शंकर भजन बिना नर भगत की पावे मोर. That a devotee cannot find me without worshipping Shankar.
Yeah.
What?
अगर शंकर की भक्ति नहीं की तो भगवान की भक्ति पूरी हो ही नहीं सकती.
If you do not perform the bhakti of Shankar, then God's bhakti cannot be said to be complete at all.
ये भी कहा है, शिव द्रोही मम दास कहावा.
It has also been said, शिव द्रोही मम दास कहावा. Meaning, the one who is hostile towards Shiv cannot be my servant.
Sonar sapne ho moh na paava.
Sonar sapne ho moh na paava. He cannot attain me even in his dreams.
Jo Shiv ka drohi hai, wo mere ko nahi prapt kar sakta.
The one who opposes Shiv cannot meet me.
Mere ko mane kisko?
Me refers to whom?
Jo Bhagwan ka sakar part hai, उसको प्राप्त ही नहीं कर सकता.
He cannot meet the corporeal part of God at all.
अगर शिव की ग्लानी करेगा तो.
If he defames Shiv.
तो तुम सिर्फ कहते हो शिव भगवान वाच.
So you just say शिव भगवान वाच.
दुनिया में कोई भी कहता ही नहीं है.
Nobody else says this in the world at all.
परंतु मनुष्यों की बुद्धि इतनी ठिककर बेहतर की बन गई है.
But the intellect of the human beings has become such like a lump of soil, thicker and like a wall, bitter that. What?
Thicker ki buddhi mane?
What does thicker buddhi mean?
Thokar lage? Maya ki thodi si thokar lage. Aur anishya buddhi ban jate.
If they receive a knock, on receiving a small knock from Maya, they have a doubting intellect.
मिट्टी का ढेला होता है ना, उसमें ठोकर लगे तो क्या होता है, बिखर जाता है.
Just like there is a lump of mud, isn't there? As soon as it receives a knock, what happens to it? It disintegrates.
ऐसी यहाँ ठिककर बुद्धि बहुत ढेर के ढेर हैं ब्राह्मणों की दुनिया में.
Here in the world of Brahmins, there are numerous people like that with a ठिककर like intellect.
एक छोटी मोटी माया की ठोकर लगती है और बिखर जाते हैं और उनको भी कहते हैं भगवान समझ करके बैठ जाते हैं.
As soon as they receive a small knock from Maya, they disintegrate and people call and consider even such ones to be God.
उनमें भी समझते हैं शिव बाबा इनमें प्रवेश करता है, संदली में बैठ के हमको दृष्टि देता है.
They feel that Shiv Baba enters even them. He gives them drishti sitting on the sandali. Sandali is the seat on which Baba sits during the class.
Shiv Baba हमको murli सुनाता है.
Shiv Baba narrates the murli to them.
इनकी मत पर चलना है.
They have to follow his directions.
और वो भगवान समझ के बैठ जाते हैं, गुरु सदगुरु मान लेते हैं.
They consider him to be God, the guru, the sadguru.
बित्तर की बुद्धि है.
They have a bitter like intellect.
बित्तर कहा जाता है भीत, भीत माने दीवार.
बित्तर means भीत, भीत means wall.
क्या?
What?
कैसी बुद्धि है?
What kind of an intellect do they have?
जैसे दीवार होती है कोई के रास्ते में आके खड़ी हो जाती है।
फॉर एग्जाम्पल, इफ देर इज अ वॉल, इट स्टैंड्स इन समवन्स वे एज एन ऑब्स्टेकल।
दुनिया की प्रसिद्ध दीवार कौन सी है?
विच इज द फेमस वॉल ऑफ द वर्ल्ड?
चीन की दीवार।
द वॉल ऑफ चाइना?
क्या?
वॉट?
और देश की दीवार नहीं।
इट इज नॉट अ वॉल ऑफ एनी अदर कंट्री।
चीन की दीवार।
इट इज द वॉल ऑफ चाइना।
ये चाइना ऐसा देश है कि अभी तक तो क्रिश्चियंस ने जीत पा ली होती सारी दुनिया के ऊपर।
चाइना इज सच अ कंट्री दैट विदाउट इट द क्रिश्चियंस वुड हैव कॉन्कर्ड द एंटायर वर्ल्ड।
लेकिन दीवार बन के खड़ी हो गई।
बट इट स्टूड लाइक अ वॉल इन देयर वे।
माया भी ऐसी ही।
माया इज ऑल्सो लाइक दैट।
कैसी?
हाउ?
कि भगवान की पहचान के रास्ते में दीवार बन के खड़ी हो जाती है।
इट स्टैंड इन द वे ऑफ द इंट्रोडक्शन ऑफ गॉड लाइक अ वॉल।
न खुद समझती है न दूसरों को भगवान की पहचान समझने देती है।
नीदर डज शी हरसेल्फ अंडरस्टैंड नॉर डज शी अलाउ अदर्स टू अंडरस्टैंड द इंट्रोडक्शन ऑफ गॉड।
तो मनुष्यों की बुद्धि ऐसी बिस्तर की है जो सहज बात भी उनकी बुद्धि में नहीं बैठती।
सो द इंटेलेक्ट ऑफ द ह्यूमन बींग्स इज लाइक अ वॉल। इवन समथिंग ईजी डज नॉट सिट इन देयर इंटेलेक्ट।
क्या क्या सहज बात?
वॉट? विच इजी टॉपिक?
कि भगवान एक व्यापी रहे तो फायदा है या सर्वव्यापी रहे तो फायदा है।
दैट इज इट बेनिफिशियल इफ गॉड इज एक व्यापी प्रेजेंट इन वन ह्यूमन बींग और इफ ही सर्वव्यापी ओमनी प्रेजेंट।
एक व्यापी रहने से तो याद किया जा सकता है।
ही कैन बी रिमेम्बर्ड इफ ही इज एक व्यापी।
और सर्वव्यापी होगा तो बुद्धि का हाल क्या होगा?
एंड इफ ही इज ओमनी प्रेजेंट वॉट विल बी द कंडीशन ऑफ द इंटेलेक्ट?
बिखर जाएगी या स्थिर रहेगी, एकाग्र होगी?
विल इट स्कैटर और विल इट रिमेन कॉन्स्टेंट? Will it remain focused?
सोचना चाहिए हमारा प्यार किससे है।
You should think whom do we love?
एक से प्यार करना सहज है या अनेकों से प्यार करना सहज है?
Is it easy to love one being or is it easy to love many?
एक ऊंचे से ऊंच अगर पहचान में आ जाए तो प्यार ऊंचे से ऊंच साबित हो जाएगा।
If we recognize the one who is the highest of all, then the love will be proved to be the highest of all.
मिट्टी से तो प्यार नहीं होता।
We certainly don't have love for the soil, meaning body.
आत्मा इस शरीर में से निकल जाती है तो शरीर क्या हो जाता है?
When the soul departs from this body, what does the body become?
मिट्टी हो जाता है।
It becomes soil.
फिर कोई उससे प्यार करता है?
Then does anyone love it?
कोई कोई हुए भी है दुनिया में से क्या?
There also have been some people like that in the world. What?
महबूबा उनकी मर गई, फिर वो देह से जाकर के प्यार कर लेते हैं।
That if their beloved died, they love her dead body.
लेकिन वो स्थायी नहीं होता।
But it, the love is not permanent.
क्या?
What?
आखिर बुद्धि में बैठना ही है कि ये तो मिट्टी है।
It has to ultimately sit in the intellect that it is soil.
ये कोई चैतन्य नहीं है, ये सुख देने वाला नहीं है।
इट इज नॉट अ लिविंग थिंग, इट इज नॉट गोइंग टू गिव एनी हैप्पीनेस।
इससे तो दुख ही मिलेगा।
इट विल गिव ओनली सोरो।
महीने दो महीने में तो उसमें सहन इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी, कीड़े बढ़ जाएंगे, भाग जाएगा।
विद इन अ मंथ और टू इट विल बी सो डिकेड, वर्म्स विल प्रोलिफरेट सो मच इन इट दैट ही द वन हू लव द कॉर्प्स विल रन अवे।
तो मिट्टी से प्यार नहीं होता है, प्यार किससे होता है?
सो देर कैनॉट बी लव फॉर द सॉइल, होम टू बी लव।
आत्मा से प्यार होता है, आत्माओं में भी, जानवरों कीड़े मकोड़ों से थोड़े ही कोई प्यार करता है।
वी लव द सोल, इवन अमंग द सोल्स नो वन लव्स एनिमल्स वर्म्स एंड इंसेक्ट्स।
करेगा भी तो स्थायी नहीं रहेगा।
इवन इफ समवन डज इट विल नॉट रिमेन कॉन्स्टेंट।
किससे प्यार करता है?
होम टू बी लव।
मनुष्य मनुष्यों से प्यार करता है।
अ ह्यूमन बींग लव्स अ फेलो ह्यूमन बींग।
मनुष्यों से जो प्यार करता है उसमें भी एंटी सेक्स चाहिए।
द ऑपोजिट सेक्स इज रिक्वायर्ड इन द लव दैट ह्यूमन बींग्स हैव।
जो एंटी सेक्स है और शरीर का परिवर्तन होता है।
द ऑपोजिट सेक्स इन्वॉल्व द डिफरेंस इन द बॉडी,
आकर्षित करता है।
इट अट्रैक्ट,
स्त्री चोला पुरुष को आकर्षित करता है, पुरुष चोला स्त्री को आकर्षित करता है।
अ फीमेल बॉडी अट्रैक्ट द मेल, अ मेल बॉडी अट्रैक्ट द फीमेल।
तो आत्मा से प्यार है या मिट्टी से प्यार है?
सो इज देयर लव फॉर द सोल और द सॉइल?
आत्मा से प्यार होता है।
देयर इज लव फॉर द सोल, द बॉडी इज एन इंस्ट्रूमेंट।
अच्छा
अच्छा, ओम शांति।